आप ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी बौद्धिक रूप से क्या ठीक है क्या गलत है इसका ज्ञान होने के पश्चात भी हम क्यों विकारों में फंस जाते हैं और विकारी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका यदि सार रूप में देखा जाए तो एक ही कारण है, विवेक की अपरिपक्वता। जानते तो हैं लेकिन उस चीज का निश्चय नहीं होता। बहुत सी चीजें जानते लेकिन उसका निश्चय नहीं होता। जैसे कि चोर जानता है कि चोरी करना गलत काम है और ये भी जानता है कि इस चोरी में यदि पकड़े गए तो सजा क्या होगी, परंतु वो अपने स्वभाव से इतना मजबूर होता है, या यूं कहिए कि मन उसके उसकी बुद्धि पर इतना हावी रहता है कि वो फिर मोह में फंस जाता है। अरे बड़ी चालाकी से चोरी करूंगा, बड़ी होशियारी से चोरी करूंगा, सजा से मैं बच जाऊंगा। तो चोरी का जो उसके अंदर लालच है और चोरी करने के पश्चात जो उसको कुछ प्राप्त होता है, उसके द्वारा जो सुख भोगने की कल्पना उसके मन में है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण वो उस निश्चय को वीक कर देती है कि चोरी करने से जिसकी भी चोरी करता हूं उसको कितना कष्ट पहुंचता है। वो ये जानता है कि मेरा भी परिवार है और जिसके चोरी करने जा रहा हूं उसका भी परिवार है, और अपने परिवार से कितना प्रेम है उसको भी भूल जाता है, उसके परिवार का प्रेम उसके दिमाग से निकल जाता है। तो सात भावना इतनी गहरी हो जाती है इसके अंदर कि जो सजा का भय है वो भी डाइल्यूट हो जाता है, वही वो नहीं बना रहता जो कि उसके दिमाग में हर वक्त बना रहना चाहिए। तो इसीलिए महाजी कह रहे हैं कि प्रेमी ये सत्विचार हर वक्त की जरूरत है, ये निरंतर प्रक्रिया है। सत्सिमरन भी हर वक्त की जरूरत है, ये भी निरंतर प्रक्रिया है। भले ही हम आसन पर बैठ कर सुबह शाम सिमरन करते हों लेकिन ये वास्तव में निरंतर प्रक्रिया है। इसीलिए जो सत्पुरुष हमको शास्त्र के द्वारा समझा रहे हैं वो पूरा हमारे दिमाग में ज्ञान बना नहीं रहता, उसको मिस कर जाते हैं। जैसे कि अर्जुन को तो ये होश है, कृष्ण ने जो कुछ भी ज्ञान दिया उसको, अर्जुन को ये होश है कि मैं देह नहीं हूं। सब कुछ जानने के पश्चात भी दुर्योधन के अंदर यह होश नहीं है कि मैं देह नहीं हूं, उसका सारा क्रियाकलाप देह करके ही हो रहा है। बस एक ज्ञान उसके अंदर बना हुआ है, जो कहते हैं कि एक नॉलेज उसके अंदर बनी हुई है कि भाई जो ये कर्म मैं कर रहा हूं इसका परिणाम उल्टा निकल सकता है, मेरी हार भी हो सकती है मौत भी हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान बुद्धि में स्थित होता है, जिसके वशीभूत होकर जिसके निश्चय के से प्रेरित होकर जीव कर्म करता है, वो निश्चय उसकी बुद्धि में नहीं है। जब ये ज्ञान आपकी बुद्धि में स्थित हो जाता है, स्थित का मतलब आपके अंदर इसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो फिर आपकी जो दैनिक क्रिया है दैनिक जीवन है उसका स्वरूप ही बदल जाता है, उसका पर्पज ही बदल जाता है। हम भी संतलाज पढ़ते लिखते हैं, सत्संग द्वारा श्रवण करते हैं, मोटे मोटे रूप में हमको सब चीज मालूम है, लेकिन फिर भी क्या महाराज जी की तालीम के अनुसार हम एक्शन करते हैं? इसीलिए हमारे एक्शन के द्वारा हमारी ही सोसाइटी में कितने कलह क्लेश पैदा हो जाते हैं। हम महाराज जी के मानने वाले हैं, महाराज जी के ज्ञान को श्रवण करने वाले हैं, उसको जानते भी, लेकिन हमारे ही क्रियाकलाप द्वारा हमारी ही संगत में, हमारी ही सोसाइटी में कितने कलह क्लेश हो जाते हैं, ये भी हमको एक्सपीरियंस। ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि केवल उसकी नॉलेज हो जाने से बात नहीं बनती, उसको जब तक आप गंभीरता से अपने जीवन में अपनाओगे नहीं, अपने कल्याण के लिए, कि कोई चले या ना चले, लेकिन मैंने तो चलना ही है। संगत का भी एक मोह होता है, वहां भी हम मोहित हो जाते हैं। जो जीव होश में होता है, याद रखिए, वो अपने आप में अकेला होता है। इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी अपनी निबेड़, तो दूसरों के चक्कर में आके जो कुछ ना कुछ कर जाता है, प्रेमी अपनी निबेड़। गुरु ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि गुरु जानता है जिसको मैं गाइड कर रहा हूं वो जीव है, देह परेशान नहीं है, जीव परेशान है, लेकिन हम सारा गुरु ज्ञान सीखने के पश्चात भी इस मूल भाव को ही नहीं पकड़ पाते कि मैं जीव हूं जिसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु देह की होती है, फिर भी इस देह से जो कुछ भी मैं कर्म करता हूं, तो मुझको पता है कि पांच विकार से युक्त होते हैं। जब मैं देह हूं तो ये आपके कर्मों में पांच विकार उदय होंगे ही होंगे, और वो संस्कार आपके मन के अंदर इकट्ठे होंगे ही होंगे, इससे कोई आपको बचा नहीं सकता। उसको ये भी होश रहता है जिस मन के अंदर सारे संस्कार बने हुए हैं, जिन कर्मों का फल मैं नहीं भोग पाया हूं, वो सारे कर्म फल भी उसके अंदर बने हुए हैं। अब इसी मन को संग लेकर मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, इसी मन को लेकर मैं इस देह का त्याग करूंगा, और खाली त्याग ही नहीं करूंगा, मेरे मन के संस्कारों के अनुसार ही तुरंत ही, बीच में टाइम गैप है ही नहीं, तुरंत ही नई देह मुझको मिल जाएगी। और पास्ट और वर्तमान जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है उसमें से उसका एक पार्ट उस देह के द्वारा भोगने को मिलेगा, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं। तो अब बताइए, ये जन्म तो मैंने अज्ञानता में बर्बाद किया ही, अगला जन्म भी मैंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन प्रारब्ध के अधीन चलेगा, और इस प्रारब्ध को बदलने की शक्ति किसी को भी नहीं गई। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितना ही गुरु भक्ति कर लो, लेकिन ये प्रारब्ध आपका जैसा है पत्थर की तरह से वैसा ही रहे। कोई ज्योतिष, कोई पंडित, कोई मुल्ला इसमें लेश मात्र भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए महाराज जी ने संता विलास में साफ साफ लिख कर दिया, क्योंकि हम लोग तो कुछ ना कुछ अपने सामाजिक संस्कारों का मानते रहते ना, मान्यता हमने बना रखी, लेकिन गुरु की बात यदि ध्यान से पढ़कर देखो गुरु क्या लिख रहा है। गुरु पीर नबी पैगंबर अवतार सबको अपनी करनी का फल मिलता है। मौत जन्म सुख और दुख ये सब प्रारब्ध कर्म का फल है, कोई इनसे रक्षा नहीं कर सकता। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो साक्षात लिखकर आपको दे रहा है, तभी पूरे जन्म में कंफ्यूज रहता हूं, नहीं कुछ तो हो ही सकता है। फिर कहते हैं ईश्वर भक्ति करने वाले का जो सूली की सजा है वो कांटे में बदल जाती है, वो नहीं बदलती, वो सूली की सूली ही बनी रहती है। वो कांटे में कैसे बदलती है कि तू जो बेचैन होता सूली की सजा जब तुझको सुनाई जाती, लेकिन तू यदि ईश्वर भक्त है तुझको वो बेचैनी इतनी ही कम होती है जितना कि कांटा चुभने से। जो आम व्यक्ति है उसको वो तकलीफ होगी जो सूली पे चढ़ने से होती है। सूली पे दोनों चढ़ेंगे, भक्त भी चढ़ेगा और सांसारिक व्यक्ति भी चढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर उसकी जो फीलिंग होगी सजा दुख की वो कांटे के समान होगी। ये है वो सूली की सजा कांटे में बदल जाती, क्यों? क्योंकि जिंदगी उसने ईश्वर के साथ व्यतीत की है, अंतर्यामी ईश्वर के साथ, जीव बनके उसने जीव भाव से व्यतीत की है। देह तो संग लेके घूमा है, वो भी महाजी भी देह को संग रखे ही घूमते, लेकिन भगत जी से कह क्या रहे हैं महाराज, जब जंगल से पहाड़ी जंगल से नीचे आ रहे हैं तो भगत जी से कह रहे हैं बनारसी इस समय शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छाया संग चल रही है, और मेरे लिए ये देह कैसे प्रतीत हो रही है, जैसे मैं चल रहा हूं, मुझको देह ऐसी अनुभव हो रही है जैसे मैं चल रहा हूं, और मेरे गुरु को देह ऐसे अनुभव हो रही है जैसे कोई छाया संग चल रही है। हमने जीवन गाथा पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, कभी किस प्रकार से सोचा हमने, गुरु का एक वाक्य मुंह से निकल रहा है, लेकिन क्या उस वाक्य के बारे में इस प्रकार से मैंने सोचा, आप देखोगे नहीं सोचा। किसी ने हो सकता 20 बार जीवन गाथा पढ़ी है, लेकिन इस तरह से कभी नहीं सोचा। गुरु की बात वो पढ़ के हमने 10 लोगों को सुनाई भी होगी, लेकिन महाराज जी ने वो बात क्या सुनाने के लिए कही थी या फील करने के लिए कही थी, उस पर मनन करने के लिए कही थी? गुरु की हर बात पे, चाहे उसके जीवन की घटना हो, चाहे उसकी लिखित बात हो, चाहे उसकी वाणी हो, मैंने उस पर गहरा मनन करना होता है। उस चीज को मैंने जीना होता है, वो मेरी लाइफ का पार्ट बनता है, मैं पढ़ जाता हूं, मैं नॉलेज गेन करता हूं। तो सत्संग और स्वाध्याय नॉलेज गेन करने की नहीं है, ये संसारी किताबों से, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स से नॉलेज गेन की जाती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से नॉलेज गेन की जाती है, शास्त्रों से नॉलेज गेन नहीं की जाती, वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं आपको, वो जीवन है जो ऋषियों ने जिया है, और तू इसलिए पढ़ रहा है कि तूने भी वैसा ही जीवन जीना है, इसलिए पूरा जीवन भर जो चीज आप रोज पढ़ते हो उस पर गहरा मनन करना है। कि मैं इतने साल से पढ़ रहा हूं, मैं इसके अनुसार जीवन क्यों नहीं जी रहा हूं, क्या कमी है, कहां अज्ञानता बनी हुई। तो आप डेली कंपेयर करते हो कि मैं इसके अनुसार जीवन क्यों नहीं जी पा रहा हूं, तो वो आपको मनन में ले जाता है, वही ज्ञान, वही 2 पंक्तियां पढ़ी हैं आपने या 1 पैराग्राफ जो पढ़ा है, वो आपको मनन में ले जाता है। आपको कमी नजर आती है कि मैं वास्तव में क्या कर सकता हूं, फिर भी मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, तो फिर आप और गंभीर होते हैं। उसको प्रैक्टिकली जीवन में अपनाने के लिए और गंभीर होते हैं। महामंत्र महिमा की वाणी क्या कह रही है, कलह कलेश सब दूर होए। महामंदिर की महिमा की वाणी का अंतिम दोहा क्या कह रहा है, विचार करके तो देखो, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए संयोग। ये मंत्र क्या चीज है, इसकी शक्ति क्या है मंत्र की, कलह कलेश सब दूर होए। कलह कलेश कहां होते हैं, कलह कलेश देह में होते हैं या मन में होते हैं? मन और देह कोई अलग चीज नहीं है, मन सूक्ष्म शरीर है और देह स्थूल शरीर है, और ये दोनों शरीर हमेशा संग ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। जैसे देह और देह की शक्ति कभी अलग नहीं होते, ये संग ही रहते। तो वाणी कह रही है कि कलह कलेश सब दूर होए, तेरे सारे कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मन एक दिन संकल्प रहित हो जाए, और संकल्प रहित हालत को ही समाधि कहते हैं। तो इसलिए क्या मिलेगा तुझे, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग। ज्ञान तत्व कहते हैं समता स्थिति, जो महाजी की स्थिति, वो ज्ञान तत्व की स्थिति है। पाए ज्ञान तत्व योग, ज्ञान तत्व से तेरा योग होगा, उसको वो स्थिति में ये ले जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मंगत तत् अक्षर नित गाइए। अब इनको तत् अक्षर कहते हैं, ये जो अक्षर हमको अल्फाबेट से दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है, ये तत्व हैं, और तत्व कहते हैं ब्रह्म को। अध्यात्म में तत्व किसे कहते हैं, ब्रह्म को, जो इस सारी सृष्टि का मूल तत्व है, जिससे ये उत्पन्न हुई है, जिसमें ये लीन होती है, उसको तत्व कहते हैं। तो ये जो अक्षर हैं, ये तत्व रूप हैं, अर्थात ब्रह्म रूप है। नित गायी का मतलब होता है निरंतर सिमरन कीजिए, इसको निरंतर अपने सिमरन में रखिए, धारण कीजिए, प्रभु दर्शन हो सके। जो इसका सिमरन इस प्रकार से करेगा, उसको अपने अंदर प्रभु दर्शन का संयोग प्राप्त हो। और हम क्या समझते हैं मंत्र का, बार बार कंप्लेंट क्यों करते हैं कि क्या करें, सिमरन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, और उसका जो मूल कारण है मन नहीं लगता, उसका मूल कारण यह है कि मैं मंत्र को ईश्वर नहीं समझता। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति जो ब्रह्म ऋषि है, जो सद्गुरु है वास्तव में, उसको मनुष्य समझने लगे, तो आप क्या कहोगे, आपको उसकी बुद्धि पर तरस ही आए? देह मनुष्य की है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। जो मुझसे बात कर रहा है, जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, वो मनुष्य नहीं है। तो जो शिष्य है, उसको हर वक्त ये बोध रहता है, जो गुरु का संग करता है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझसे सीधी ईश्वर बात कर रहा है। तो इसलिए वो ईश्वर की प्रेजेंस अनुभव करता है गुरु के शरीर के माध्यम से, ना कि मनुष्य की प्रेजेंस अनुभव करता है। तो ऐसा शिष्य क्या गुरु की अवज्ञा करने की हिम्मत होगी इसके अंदर? विचार करके देखो, जिसके अंदर हर भक्त ये भाव बना रहे कि मेरा गुरु ईश्वर है, तो उसके अंदर यह भाव भी तो बना रहेगा, गुरु कह भी तो रहा है सतगुरु तो अंतर्रम है, वो तो मेरे हृदय में ही विराजमान है, बाहरी नहीं है वो। तो घर भी बैठा होगा शिष्य, उसको होश बना रहेगा कि गुरु मेरे संग में मुझे देख रहा है। इसीलिए महाजी के पास जब नत्था राम आए थे, तो महाजी ने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सिगरेट पीता हूं। तो महाजी ने कहा कि आज से सिगरेट नहीं पीने प्रेम, वायदा कर लिया महाजी ने पीने, आदत पड़ी थी, आदत तो बड़ी सख्त होती है, गुरु से वायदा कर लिया, घर जाकर दिन भर पी भी नहीं उन्होंने, लेकिन शाम के वक्त जब तलब ने जोर मारा तो छत पे गए और सुलगा ली। पहला ही कश मारा तो इतनी जोर का फंदा पड़ा गले में कि जिंदगी के लेने देने पड़ गए, श्वास आनी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल से जान बची उनकी। अगले दिन जब गुरु के पास जाते हैं जगाधरी नई आश्रम में, अब देखिए गुरु तुरंत क्या कहते हैं, नत्था राम हरकत से बाज नहीं आया, दूसरा कश लगा के देखता तब पता लगता। अब बताइए ये जो शिष्य है क्या फिर कभी भूलेगा कि गुरु नहीं देख रहा है? क्या आप आशा करते हो ये वो भूल जाएगा कि गुरु नहीं देख रहा है? लेकिन मैंने इस घटना को 100 बार सुना होगा, 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं हर बार भूल जाता हूं कि गुरु देख रहा है। मैं हमेशा ही भूला रहता हूं कि गुरु देख रहा है। तो अब बताइए मैं भी अपना टेस्ट करूं, टेस्ट इसी आधार पर होगा, मेरे लिए तो गुरु 54 में खत्म हो गया, अब तो उनकी बात मानू ना मानू मैं स्वतंत्र हूं, वो कहां देगा? यदि तूने उसको गुरु रूप में धारण नहीं किया है तो वास्तव में नहीं देख रहा, तू स्वतंत्र, तू कत्ल कर, चोरी कर, लोगों को परेशान कर, गुरु के बनाए नियमों को तोड़, जो बनता है करता है। लेकिन ये भी तो देख कि तेरे जीवन में तेरा गुरु कोई भी नहीं है, तेरे 5 विकार ही तेरे गुरु हैं, ये भी तो देख। ये कहना बड़ा आसान है कि महाजी हमारे गुरु हैं, लेकिन महाराजी को गुरु अपने जीवन में धारण करना ये तभी संभव है जब ये मेरा विवेक हर वक्त बना रहे, गुरु देख रहा, गुरु जो बात भी कह रहा है वो पत्थर की लकीर है, गुरुवाणी जब ये हमको लिखकर बता रही है कि ये मंत्र ईश्वर है और इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये समता स्थिति देगी, वही स्थिति में ले जाएगी जो गुरु की स्थिति है, फिर भी मैं मंत्र के प्रति लापरवाह हो रहा हूं, मैं उसको मंत्र करके कह रहा हूं, अरे कहते हैं होता थोड़ा है ऐसा। तो अब देखो राम कृष्ण परमहंस क्या कह रहे, वो कहते हैं कि सूर्य और सूर्य की किरण, ये सूर्य ही तो है, सूर्य और सूर्य की किरण सूर्य ही तो है, क्योंकि मेरा संपर्क क्या होता है सूर्य से होता है? कभी मेरा संपर्क धूप से होता है, अर्थात सूर्य की किरण से होता है, लेकिन गुरु कह क्या रहा है, एक ब्रह्म ऋषि क्या कह रहा है कि सूर्य और सूर्य की किरण एक ही तो है। इस देह के अंदर वो चेतन सत्ता, वो आत्म सत्ता, वो गुरु सत्ता मौजूद है। गुरु खुद कह रहा है और हम भी जानते हैं। सरल रूप में समझने के लिए महाजी ने बस एक सीधी सी बात कही थी, प्रेमी तेरे जिस्म में जान है ना, कोई डिनाई नहीं कर सकता मेरे जिस्म में जान नहीं, वो तेरे वश में है क्या? मैं जानता हूं मेरे वश में नहीं, कब प्राण चले जाएंगे मुझे पता नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर भी इसको नहीं रोक सकता। जिस्म में जान है और उसी से देह चल रही है, और गुरु कह रहा है प्रेमी यही तो ईश्वर है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं मनन करूं ईश्वर मेरा जीवन है, इसके बिना तो मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और ऐसे ईश्वर को मैं भूले बैठूंगा कि संसार की छोटी मोटी माया के लिए जो करोड़ों जिंदगी बर्बाद कर चुकी, उस माया को मैं सीने से लगाकर उसका अहंकार करके समाज में जी रहा हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरी क्या दुर्दशा होगी? होश है मुझे इसका? बात गुरुओं की बड़ी सरल सी होती है, बात कितनी गहरी होती है, सरल होते हुए भी यदि मैं उस पर मनन करूं तब पता रहता है कि गुरु क्या हर वाक्य जिंदगी भर विचार करने के लिए रहता है। वो गुरु का निर्णय बुद्धि से कभी निकलना नहीं चाहिए, हर समय बना रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बड़ी सादी सी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है, जो विचार करके देखो। जिसने गुरु की इस बात पर मनन किया होगा कि सूर्य और सूर्य की किरण सूर्य ही तो है, अब आपको पता लगेगा कि इस देह के अंदर वो ईश्वर मौजूद है। लेकिन किसी भी भक्त की जो सेवन करता है, जो प्रभु की भक्ति करता है, उसको अपने अंदर ईश्वर से पहली भेंट किस रूप में होती है? महाराज जी ने वाणी में दो शब्द लिखे, नाद और निरत। निरत कहते हैं कुंडलनी को और नाद उस इटर्नल साउंड को कहते हैं, उस दिव्य आवाज को कहते हैं जो ईश्वर की आवाज। जैसे किरण किसकी है? सूर्य की है। ऐसी वो नाद कहां से प्रकट हो रहा है? ईश्वर से प्रकट हो रहा है। तो ईश्वर को क्या कहा जाता है? नाद रूप, उसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। और किरण को क्या कहा जाता है? सूर्य रूप। किरण का जो स्रोत है तो किरण जी तो सूर्य रूप ही है, लेकिन मेरी भेंट सूर्य से नहीं होती। सूर्य में मैं खत्म तो हो सकता हूं, सूर्य से भेंट नहीं करता। मेरी भेंट होगी तो सूर्य की किरण से ही होगी। तो इसीलिए इस देह के अंदर तीन चीजों का संगम करते हैं, तीन किरणों का संगम करते हैं, या तो कुंडलनी रूप में, या नाद रूप में, या मंत्र रूप में। ये उस सूर्य की किरण के तीन रूप हैं और तीनों ही सूर्य की किरण है। इसीलिए मंत्र को ईश्वरावतार कहा जाता है शास्त्र। नाम ब्रह्मेति उपास्ते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए, किरण को सूर्य जानकर उपासना करनी चाहिए। और मैंने कितनी बार सुना होगा, लेकिन आज तक क्या मेरा वास्तव में ऐसा ही निश्चय बना है? विचार करके देखें, मनन करके देखें, बातें तो हम कर लेंगे, नहीं साहब मंत्र ईश्वर रूप होता है, लेकिन क्या मेरे अंदर ये लाइव फेथ है? ये मंत्र नहीं है, ये ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस तो कह रहे हैं कि मंत्र गुरु ईश्वर एक चीज है, और महर्षि रमण कह रहे हैं कि आत्मा मंत्र गुरु कुंडलनी एक चीज है। ये महर्षि रमण कह रहे हैं, ये ब्रह्म ऋषि ये बातें कर रहे हैं। महाराज जी जो ब्रह्म ऋषि हैं उनकी वाणी क्या कह रही है? कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान सतयोग। उस ब्रह्म स्थिति की, उस सूर्य की तुझे प्राप्ति होगी। कब प्राप्त होगी? जब तू अंदर इस ईश्वर रूपी मंत्र का सम्मिलन करेगा, सिमरन करेगा। इसीलिए सिमरन जब कहा जाता है तो मौन होके कहा जाता है कि देह से तेरा संबंध टूट जाए। टूटता नहीं है, लेकिन आपको ये तो सिखाया जाता है कि सिमरन करने बैठो तो देह को इस पोस्चर में रखो कि देह की आपको याद ना है। ये तो कहा जाता है। तो देह की याद नहीं आएगी तब आपके अंदर एक दूसरा भाव जो सिमरन करने वाले के अंदर बना रहना चाहिए, जिसको महाजी कहते हैं कि बिना विवेक और बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं होता। हम तो आज पढ़कर देखें, लिखा नहीं लिखा है। बिना विवेक और बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं होता। अभ्यास तो हम करते हैं लेकिन सही नहीं होता। तो विवेक क्या है? कि देह मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए देह को आपने शांत कर दिया। मैं जीव हूं, मैं कॉन्शियस पावर हूं, मेरे अंदर होश है, तड़पता मैं हूं, सुख सुख और दुख मैं अनुभव करता हूं। देह कुछ अनुभव नहीं करती, देह जड़ है। तो अपने आप को चेतन समझकर, जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें होश है, तो मैं अपने होश को देह से अलग करता हूं और काय में लगाता हूं, मंत्र में लगाता हूं। और इस होश वाले जीव के अंदर के लिए मंत्र क्या है? मंत्र उसके लिए गुरु है, ईश्वर है। तो अब वो लाइव गॉड का संग कर रहा है मौन होकर, इसका नाम है सिमरन। ये ईश्वर का जीव का सीधा मिलन है। जिस प्रकार मैं यदि देह हूं, ईश्वर भी यदि देह है, मैं उसका आलिंगन करूं, तो ये दो देह का मिलन है, जीव का और ईश्वर का मिलन। क्योंकि ना ईश्वर देह है ना जीव देह है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि देह को शांत कर और विवेक अंदर बनाए रख कि मैं जीव हूं। मैं वो हूं जिसका जिसके ऊपर मन का असर पड़ता है, जिसके ऊपर देह और संसार का असर पड़ता है। मैं सुखी दुखी होता हूं, मैं बेचैन होता हूं, चैन मुझको चाहिए। तो देह मरणशील, देह निरंतर परिवर्तनशील, संसार परिवर्तनशील, यहां हर चीज बदल रही है, संबंध बदल रहे हैं। आप कितना भी बढ़िया बिजनेस कर लो, हमेशा खतरा बना रहता है। पता नहीं मार्केट की क्या ट्रेंड बन जाएगा, कैसा फैशन बदलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता, ये नहीं एक बार सेट कर लिया हमेशा चलता रहेगा, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तेरी देह में भी, तेरे बिजनेस में भी, तेरे संसार में भी, हर चीज में, रिलेशनशिप में भी, यहां कुछ स्थिर नहीं। तेरी हर चीज जब परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील संसार में महाजी कहते हैं तू शांति की तलाश करना चाहता है, संतोष चाहता है, ये कभी मिल पाएगा तुझको? संसार में जो भी आया, जो जीव भी संसार में देह धारण करके आया, आज तक एक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संसार में रहकर संतोष की प्राप्ति हो गई। यदि किसी को हुई है तो केवल उसकी उसको हुई है जो ईश्वर के लिए जिया। तो अब बताइए, बात तो आप दुर्योधन की कर रहे हैं, दुर्योधन के शब्द तो कह रहा है वो, ये मौखिक रूप से शब्द है कि मुझको अंदर से बोध था कि ये मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं गलती करता रहा। बोध होने के पश्चात ये मैं गलती करता रहा। केवल नॉलेज थी, निश्चय नहीं था। केवल नॉलेज, निश्चय नहीं था, विवेक नहीं था, विवेक उस स्थिति का नाम है जो निश्चय आपकी बुद्धि में हर वक्त बना रहता है। और संसार का कोई भी जीव अपने बुरे दिन नहीं चाहता। जिसके अंदर विवेक बना होता है उसके अंदर यह भी पता होता है कि जो कर्म इस देह से हो गया और वो कर्म मैंने इच्छा करके किया है तो उसका परिणाम जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा ही मिलेगा। अर्थात तेरे कर्म से जितना दुख जीवों को पहुंचा है वो तो सारा दुख तेरे शरीर पर वो तो 100 शरीरों में भोगा लेकिन तू अकेला उस दुख को भोगेगा क्योंकि तेरे द्वारा वो पैदा हुआ। तो विचार करो तो कहां जाएगा। गलती तो जो अज्ञान कारण रह के कर रहा है। एक भोला ग्राहक तेरी दुकान पे आ गया तू होशियार है। वो होशियारी नहीं है वो चालाकी है। तू उससे ज्यादा प्रॉफिट तो ले रहा है। कहता है कि वाह तू ये भूल रहा है तू सौदा ईश्वर के साथ कर रहा है। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी यदि तू सही पैसे लेना चाहता है तो एक बात ख्याल रख कि तेरी दुकान पर गुरु ग्राहक बनकर आया है और तू ले जितना लेना चाहे। तो गुरु क्या समझाना चाह रहा है। एक नीति समझाना चाह रहा है कि तू गृहस्थ जीव है तूने गुजारा करना है। तू दुकानदार है तो ग्राहक को भी तूने ठीक चीज देनी है और ठीक प्रॉफिट भी लेना। मार्केट का ट्रेंड यह है कि 100 के 200 बनाओ तो तेरा ट्रेंड तो नहीं होना चाहिए। तू सीख शास्त्र क्या नीति करे। तो नीति के अनुसार तू जायज प्रॉफिट ले सकता है। तू नकल नहीं कर सकता चाहे पूरा देश पूरा सोसाइटी एक रास्ते पे चल रही लेकिन तेरा वो रास्ता नहीं है। तूने गुरु को देखकर चलना है शास्त्र ज्ञान को सीखना है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो जब तक तेरा निश्चय नहीं बदलता तब तक तेरे एक्शन में परिवर्तन नहीं आएगा। तू यही कहता रहेगा क्या करूं जानता सब कुछ हूं परंतु फिर भी इन गलतियों को छोड़ नहीं पा रहा। मैं संसार की नकल करता हूं गुरु की बातों पर ध्यान दूं शास्त्रों की बातों पर ध्यान दूं तो फिर ये शिकायत में करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या करूं अंदर से जानता तो मैं सब कुछ हूं फिर भी गलतियां हो जाती हैं। फिर मैं प्रारब्ध को दोष देता हूं प्रारब्ध ने मुझसे ये करवा लिया मैं क्या करूं। यदि इसको इसका उत्तर सीखना ही है तो सीधी सीधी सी बात सुन लो। अर्जुन ने यदि कृष्ण की बात ना मानी होती और अर्जुन ने राजा बनकर ही राजकुमार बनकर ही युद्ध किया होता तो कितने जन्म उसकी सजा भुगतता आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी देह से कर्म वही हुआ जो प्रारब्ध था और कृष्ण उसको आगाह कर दिया लेकिन फिर अर्जुन ने देह बनकर युद्ध नहीं किया। उसने ये समझ लिया ये देह का प्रारब्ध है और कृष्ण ने उसको समझा लिया कि तू अंदर जो ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है तो ईश्वर प्राप्ति उसी को होती है जिसका सुख और दुख से कोई संबंध नहीं रहता। सुख और दुख से जिसका कोई संबंध नहीं रहता अर्थात सुख और दुख जिसके लिए एक जैसे हो जाते हैं उसका अंतर्यामी ईश्वर से संबंध बनता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहां मैंने पहुंचना है सुख दुख से मेरा संबंध ही नहीं रहना चाहिए मेरे लिए सम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए महाजी ने ये 5 नियम वाला प्रोग्राम दिया सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्संग कि इस पर ईमानदारी से चलते चलते तो क्या देखेगा अपने अंदर चेंज कि सुख और दुख तेरे जीवन में अब भी आते हैं वो प्रारंभवश आएंगे और जाएंगे कि तेरे मन पर या यूं कहे कि तेरे ऊपर वो इफेक्ट नहीं डालते जो पहले डाला करते। तेरी देह भी रोगी होगी, पहले भी होती थी, अब तो ईश्वर हकम में उस रोग को सहन कर लेता है और चैन से इलाज भी कर लेता है। पहले बड़ा तड़पाता था, हाय मर तो नहीं जाऊंगा कहीं, हाय ये रोग मेरा बह तो नहीं जाएगा कहीं। जितना देह से अटैचमेंट तेरा ज्यादा था, रोग भी तुझको उतना ही ज्यादा सताता था। तेरी बुद्धि में जितना गहरा अज्ञान था, रोग भी उतना ही ज्यादा सताता। और जितना तेरे अंदर विवेक स्ट्रांग हो रहा है, तेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, तेरा धैर्य बढ़ रहा है और सुख दुख तुझको ज्यादा क्लेश नहीं पहुंचा रहा है, तो धीरे धीरे तेरे अंदर शांति बढ़ रही है, संतोष बढ़ रहा है, जैसे जैसे तू गुरु ज्ञान को जीवन में अमल में ला रहा है। इसलिए रात दिन गुरु पर नजर रहनी चाहिए, गुरु क्या करने को कह रहा है, कैसे जीने को कह रहा है। और ये नजर तभी बनी रहेगी जब गुरु का जो ज्ञान है, चाहे वो संत रविदास के रूप में है, चाहे वो वाणी के रूप में, उस ज्ञान को मैं सीखता रहा। इसलिए नित्य अध्ययन की जरूरत होती है। एक घंटा तो मैं लगाऊं, इतना पूरा जन्म मेरा निरर्थक जा रहा है, सार्थक करने के लिए एक घंटा नहीं लगा सकता हूं। एक घंटा भी उस गुरु ज्ञान को मैं गहराई से पढ़ूं, उस पर चिंतन करूं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं इतना लापरवाह बना रहा हूं जितना पास में बना रहा। मैं होश में दिन प्रतिदिन आता रहूंगा, मेरा होश बढ़ता रहेगा और ये जीवन मेरा शुद्ध होता रहेगा, एक दिन ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएगा। ओम गणपति।